नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महोत्सव की वरादेव भगवान आविर्भाव तिथि महोत्सव की। तो वरादेव के बारे में आप कल सुन चुके हैं जितेंद्र प्रभु से, आज हम नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं और बलराम जी स्वयं प्रकट हुए हैं। एक तो होता अवतार, एक स्वयं भगवान जब प्रकट होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अवतार नहीं है, अद्वैत आचार्य अवतार है, महाविष्णु के अवतार हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। तो नित्यानंद प्रभु आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, आदि गुरु तत्व माने गए हैं, यानी कि जितने भी गुरुजन हैं वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि माने जाते हैं। और जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा ना हो तब तक हम लोग प्रचार नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम लोग इस हरिनाम का वितरण कर सकते हैं। जैसे कि ठाकुर भक्तिनोद ने बहुत सुंदर लिखा है, अभी मुक्तिदाता प्रभु गा रहे थे थोड़ी देर पहले, नदिया गोदरू में नित्यानंद महाजन पाती आछे नाम हट जीवे रेखा। तो गोदरुम द्वीप में सुरभि कुंज में नित्यानंद प्रभु ने क्या खोला, नाम हट खोला, और वहां पे क्या किया उन्होंने, हरि नाम का वितरण किया। और इसको खरीदने वाले कौन थे, श्रद्धावान जन, यानी कि श्रद्धा ही मूल्य है इस हरि नाम को खरीदने के लिए, और कोई मूल्य नहीं है। तो इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा नित्यानंद प्रभु के बारे में, और कई सारे भजन ठाकुर भक्तिनाथ के द्वारा लिखे हुए हैं। अभी जो भजन गाया हमने वो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे थे, और बीच में भी हम थोड़ा और भजन गाएंगे। जो मृदंग वादक हैं, करताल बजाने वाले हैं, वो साथ में रहें, चले ना जाए। तो अब हम उनके थोड़े जीवन चरित्र के बारे में बताना चाहेंगे। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। बृहद यामल में ऐसा वर्णन मिलता है, स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मेरा अंश विस्तार जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होंगे और सभी सन्यासियों में चूड़ामणि होंगे, क्रश्ड ज्वेल अमंग ऑल दी सन्यासी। तो इस तरह से शास्त्र प्रमाण है हमारे पास, हम एक किसी को भगवान किसी भावुकता के आधार पर नहीं स्वीकार करते हैं, हम लोग गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी ज्यादा छुपे हुए हैं, हुयतम है बहुत, इसलिए उनके बारे में जानना या उनका नाम ही जानना अपने आप में बहुत ही गुह्यतम बात है, रहस्य की बात है। जब हम लोग इस संस्था में नहीं जुड़े थे और संस्था से जुड़ भी गए थे तो कई सालों तक हमें तो ये भी नहीं पता था कि नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है। इस संस्था में आने के बाद भी और इस संस्था में आने के बाद भी अभी भी कई भक्त होंगे जिन्होंने उनका जन्म स्थान नहीं देखा होगा। तो इतने ज़्यादा जो हैं गुप्त हैं नित्यानंद प्रभु, बहुत छुपे हुए हैं, और अगर उनको आपने ढूंढ निकाला तो निश्चित रूप से आपको गौरंग महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो नित्यानंद प्रभु को ढूंढ निकालना लेकिन इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे एक जगह श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया है कि नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, लेकिन स्वयं जो है कृष्ण की गुह्यतम सेवा में वो नहीं लगाते हैं। जो अंतरंग सेवक हैं या श्रीमती राधारानी की अंतरंग सेविकाएं हैं उनकी सेवा में स्वयं श्रीमती राधारानी लगाते हैं, लेकिन जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा ना हो तब तक श्रीमती राधारानी की कृपा भी नहीं होगी। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने जो गुरु वंदना लिखी है उसमें लिखा है श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु का अर्थ यही है कि गुरु जो है वो श्री जी के प्रतिनिधि हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के चरण कमलों में अनुराग बढ़ाना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल जाएगी, साथ में श्रीमती राधारानी की कृपा भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो हैं महाप्रभु की लीला में बड़ा सहयोग देते हैं। उम्र में नित्यानंद प्रभु 12 साल बड़े थे चैतन्य महापुरुष से, वरंग महापुरुष से, और इनका आविर्भाव हुआ एक चक्रग्राम में। एक चक्रग्राम, आप में से कितने भक्तों ने एक चक्रग्राम देखा है अपने आंखों से? देखिए संख्या कितनी कम है, इतनी बड़ी सभा में बहुत कम लोगों ने एक चक्रग्राम देखा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं नित्यानंद प्रभु कितने छुपे हुए हैं। और वो ऐसा गांव है जहां पर अभी भी वहां पे सड़क में इतनी बिजली नहीं है, और अभी भी वहां पर इमारतें नहीं हैं, बड़ी बड़ी झोपड़ी हैं, मेमने घूमते रहते हैं, बकरियां घूमती रहती हैं, और उनके पास कोई साधन भी नहीं है। गांव वालों के पास उनके अपने छोटे छोटे खेत हैं, या फिर वो गौरताय का विग्रह बनाकर बेचते हैं। जैसे यहाँ पर दुकानों में जाएंगे तो आपको जिस प्रकार सब्जी मिलती है, तरकारी मिलती है, फल इत्यादि मिलता है, उस प्रकार वहाँ पर सड़क पे आपको गौरताय मिलते हैं। अगर आप एक चक्र ग्राम जाएंगे तो जगह जगह पे कोने कोने में बैठे रहते हैं बेचारे, गरीब लोग हैं, धन नहीं है उनके पास। वहाँ पे इस्कॉन की तरफ से एक छोटा सा केंद्र खुला है, एक इमारत हमने बनाई है। प्रारंभ में गांव वालों को डर था कि कम कहीं आके, क्योंकि ये लोग विदेश से आए हैं, पूरे गांव के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हमारी ज़मीन भी ले लेंगे हमसे और हमें यहाँ से भगा देंगे। तो इस कारण से प्रारंभ से ही पहले दिन से वहाँ पर नगर कीर्तन चलता रहा है हमारे भक्तों के द्वारा, और प्रत्येक दिन वहाँ पर जीवन हेतु प्रसाद, फूड फॉर लाइफ की तरफ से प्रसाद का वितरण भी होता रहा। इस तरह से गांव वालों की जो श्रद्धा है उनका विश्वास जीता है इस्कॉन के भक्तों ने, और अभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये जो एक चक्र ग्राम है यहाँ पर बहुत एक भव्य मंदिर है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है एक चक्र धाम। ये बरभम जिले में ये स्थान है, और स्थान को वीरचंद्रपुर भी कहा जाता है, वीरचंद्रपुर बरभम जिले में। तो कभी आपको मायापुर जाने का मौका मिले तो वहाँ से लगभग 6 घंटे की दूरी पर है एक चक्रधाम। प्रातःकाल बस जाती हैं और बस में जाकर अब वहाँ कुछ समय बिताकर उसी दिन वापस लौट सकते हैं। तो छोटी सी जगह है, आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको देखने को लगेगा, देखते ही लगेगा कि कहाँ पर प्रकट हो गए नित्यानंद प्रभु, ये कौन सी जगह है, बिल्कुल उजड़ा हुआ स्थान। तो ऐसे स्थान में एक चक्र धाम में हड़ाई खोजा, हड़ाई पंडित ओझा, और माता पद्मावती के घर में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। तो ये महाप्रभु की इच्छा से पहले ही प्रकट हो गए, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से पहले, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से वो पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की। वृंदावन दास ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य माने जाते हैं, उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर ने सबसे अधिक वर्णन किया है नित्यानंद प्रभु के बारे में चैतन्य भागवत में, और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य भागवत में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो इतना विस्तार से वर्णन किया है कि अगर उनका वर्णन करना शुरू करें तो उसके लिए पूरा हफ्ता चाहिए, इतना कुछ है उनके बारे में जानने के लिए। तो राड़ देश, वो पूरा जो इलाका है उसको राड़ देश कहा जाता है, राड़ देश। और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ और बचपन में वो कई प्रकार की बाल लीलाएं करते थे। उनके भाई भी थे जिनका नाम था बांका राय, बांका राय, इसको बंकिम राय भी कहते हैं। तो ये जो बांका राय हैं ये उनके छोटे भाई थे और ये अनेकों बाल लीलाएं करते थे, खेलने जाते थे अपने मित्रों के साथ, नाटक करते थे, जैसे आज भी नाटक करते हमारे भक्त लोग। तो ये नाटक करने की जो प्रथा है वो शुरू से ही है, भगवान स्वयं नाटक करते थे, अपनी लीलाओं का क्या करते थे, नाटक करते थे। तो बाल्यावस्था में नित्यानंद प्रभु और बांका राय और साथ में कई मित्र लोग जाते थे पेड़ के नीचे, वहाँ पे अलग अलग प्रकार से वो लोग क्या करते थे, ड्रामा करते थे। भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर आधारित कई प्रकार के वो ड्रामे किया करते थे, जिस तरह से गोवर्धन लीला या फिर असुरों का वध, बकासुर अगासुर या कंस का वध करना। तो इस प्रकार कई प्रकार की लीलाएं करते थे, कृष्ण की लीलाएं किया करते थे। भगवान वामन देव के ऊपर लीला करते थे, यानी कि नाटक करते थे, नाटक करते थे। और भगवान राम के ऊपर भी लीला करते थे, भगवान राम के ऊपर मतलब नाटक करते थे नित्यानंद प्रभु। और एक आपको बताएं किस तरह से ये नाटक किया गया, भगवान राम की लीला में किस प्रकार नित्यानंद प्रभु और सभी मित्रों ने मिलकर ये नाटक किया, ये आप सुनेंगे। तो ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में थे, जब नाटक कर रहे थे तो लक्ष्मण का रोल लिया था उन्होंने, लक्ष्मण ही है तो उनके लिए वो रोल करना बड़ा आसान है। तो लक्ष्मण के आवेश थे वो, और साथ में उनके साथ पांच लड़के भी थे जो पांच बंदर का काम कर रहे थे, पांच बंदर का रोल कर रहे थे, है ना। तो वानर सेना भी होना आवश्यक है साथ में, तो ये सब वानर सेना ही थी, खेलते रहते थे ये लोग। और इस प्रकार जब वो भटक रहे थे जंगल में तो उनसे पूछा गया, तुम वानर लोग कौन हो, इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूं, आप मुझे बताएं कि क्या करना है। तो उन्होंने उत्तर दिया, हम बाली के भय से भटक रहे हैं, हमें आप भगवान श्री राम के चरणों तक ले जाएं, मैं उनकी चरण धूलि लेना चाहता हूं। तो भगवान ने उनका आलिंगन किया और उनको भगवान श्री राम के पास ले गए, उनके चरण कमलों में गिरे। और एक दिन की बात है, इस प्रकार रामलीला करते थे तो एक और प्रसंग बताया जा रहा है जिसमें भगवान ने इंद्रजीत का वध किया था जो रावण का पुत्र था। और एक दिन लक्ष्मण के भाव में उन्होंने हार भी स्वीकार की, तो विभीषण का भी कोई रोल कर रहा था और जो भगवान श्री राम के पास आए और भगवान श्री राम ने उनका क्या किया, राजाभिषेक किया, लंका का उन्हें राजा बनाया रावण का वध करने के बाद। तो इस प्रकार कई प्रकार लीलाएं होती थी। तो एक प्रसंग बताया जा रहा है जिसमें एक लड़का कहता है, मैं हूं शक्तिशाली रावण, अब मैं तुम्हारे ऊपर अस्त्र फेंकने वाला हूं, अगर तुम बचा सकते हो तो बचाओ अपने आप को लक्ष्मण। तो फिर उस लड़के ने क्या किया, एक कमल का फूल उठाया और नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंका, यह अस्त्र था। मतलब अब नाटक है तो अस्त्र तो फेंकना है, तो यह अस्त्र था कमल का फूल। तो कमल का फूल उठाया और किसके ऊपर फेंका, नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंका। और जैसे ही फेंका तो लक्ष्मण के भाव में थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अस्त्र उनको लगा और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, वाकई में मूर्छित हो गए। और मूर्छित हो गए तो सारे जो बेचारे बच्चे थे और अन्य लड़के जितने थे मित्र थे वो सारे के सारे परेशान हो गए, ये हो क्या गया है, नित्यानंद प्रभु को क्या हो गया है। और जब देखे कि कोई जीवन के या चेतना भी नहीं रही गई शरीर में तो सब रोने लगे। और हड़ाई पंडित और पद्मावती वो भी पहुंच गए वहां पर, तो उन्होंने सोचा कि क्या हो गया, कहीं शरीर तो नहीं त्याग दिया है, तो ये सोचने मात्र से ही दोनों मूर्छित हो गए, हड़ाई पंडित और पद्मावती। तो हम ये चैतन्य चरिता में यानी कि महाप्रभु की लीलाओं में, चैतन्य भागवत में जो महाप्रभु की लीला है, नित्यानंद प्रभु की लीला है, उसमें अनेकों बार आप देखेंगे ये मूर्छित होते रहते हैं भाववेश में, है ना। गौरंग महाप्रभु की लीला जो है, नित्यानंद प्रभु की लीला, मतलब क्या है, मूर्छित होते रहना, भाववेश में आते हैं, संकीर्तन किया मूर्छित हो गए, किसी का दर्शन किया मूर्छित हो गए, है ना। तो इस तरह से एक बार एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने दशरथ का भी रोल किया, और भगवान राम जब चले गए पता चला तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और एक व्यक्ति ने कहा, एक लड़के ने कहा, ये है हनुमान, इस लड़के को हमने क्या बनाया है, हनुमान बनाया है, अगर ये दवा लेके आएगा, संजीवनी बूटी लेके आएगा, तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। और इस हादसे से पहले नित्यानंद प्रभु ने अपने मित्रों को कहा था, जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो आप सब मेरे इर्द गिर्द खड़े होकर क्या करना, रोना। तो कुछ समय के बाद हनुमान जी को भेजा गया औषधि लाने के लिए, और औषधि जब वो लेके आ जाएंगे, हनुमान जी लेके आ जाएंगे, तो मैं फिर ठीक हो जाऊंगा। तो एक बार जब हनुमान जी निकले, तो ये बता रहे हैं कि हनुमान जी कैसे निकले। तो हनुमान जी जब निकले, गंधमादन पर्वत की तरफ वो बढ़ रहे थे, और रास्ते में हनुमान जी एक आश्रम में आकर रुके। एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने हनुमान जी को स्थान प्रदान किया, उन्होंने कहा कि कृपा करके आप यहाँ पे रुकें और आप यहाँ पर आकर क्या दें, आशीर्वाद लें, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं मुझे जाना है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्या समय हूँ उद्देश्य से आगे जा रहा हूँ, मैं आना तो चाहूंगा लेकिन अभी काफी देर हो चुकी है, और आपने सुना ही होगा लक्ष्मण जो भगवान श्री राम के भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो मूर्छित हो गए हैं रावण के अस्त्र के कारण, अस्त्र के प्रहार के कारण। तो मैं इसलिए गंधमादन पर्वत जा रहा हूं दवाई लाने के लिए, औषधि लाने के लिए। तो उस ऋषि ने कहा, अगर आपको जाना है बहुत जल्दी है, तो आप ऐसा करें कि आप पहले स्नान कर ले और उसके बाद कुछ खा ले, उसके बाद आप चले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दो लड़के जो हैं वो, जैसे कि उनको बताया गया था, उन्होंने वैसा किया, और जैसे ही जो है लक्ष्मण यानी कि नित्यानंद प्रभु जल के, हनुमान जी जो है जल के भीतर प्रवेश किए, तो एक लड़के ने हनुमान जी का पाँव पकड़ लिया, यानी कि मगरमच्छ ने। तो वो लड़का जो है मगरमच्छ का रोल प्ले कर रहा था, उसने हनुमान जी के पाँव को पकड़ लिया जोर से, और इस प्रकार हनुमान जी जो है फिर उस मगरमच्छ के साथ युद्ध करते हैं, और कुछ समय के बाद मगरमच्छ को हरा देते हैं। और हनुमान जी जब वापस पहुंचे उस आश्रम में, तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा योद्धा खड़ा है, वास्तव में ये भी कंस के, मतलब रावण के द्वारा भेजा गया था, और एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ था, राक्षस का वेश धारण किया हुआ था, और उसे कहा तुम जाओगे तब ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुमने तो मगरमच्छ को हराया है लेकिन मुझसे कैसे बचोगे। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा रावण कुत्ता है, हनुमान क्या बोले, तो रावण कुकुर। तो बंगाली में चल रहा था ना ये, तो संवाद है ना, डायलॉग सारे बंगाली में चल रहे थे। तारे नहीं वस्तु बुद्धि तू पाल दूर, मैं तो उसको बहुत तुच्छ मानता हूं, हट जाओ रास्ते से। तो इस प्रकार बड़े ही कठोर शब्दों का उपयोग किया जा रहा था, और दोनों लड़के जो है हनुमान जी यानी कि, और वो जो राक्षस है बना हुआ था लड़का, वो एक दूसरे के बाल खींचने लगे, जोर जोर से बाल खींचने लगे, फिर एक दूसरे के ऊपर मुष्टिक प्रहार करने लगे। और इसके बाद फिर हनुमान जी राक्षस का वध करने के बाद गंधमादन पर्वत पे पहुंचे, और वहां जाकर भी उन्होंने कुछ लड़कों को जो गंधर्व के वेश में थे उनको भी पराजित किया और पूरे गंदावादन पर्वत को ही उठा के लिया है कि हनुमान जी को मिला नहीं, औषधि प्राप्त नहीं हुई, कहां ढूंढ नहीं पा रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है पर्वत ही उठा ले जाता हूं मैं। तो पर्वत ये ऊपर पेंटिंग में भी है। तो इस प्रकार जब वापस जब आए तो भगवान श्री राम ने फिर औषधि लगाई लक्ष्मण जी के नासिका में, और जैसे लगाया संजीवनी बूटी लगाई तो फिर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जीवित हो गए। तो हराय पंडित जो है उन्होंने अपने सुपुत्र का आलिंगन किया क्योंकि लगा कि हमारा लड़का वापस आ गया है, जीवित हो गया है, और सारे लड़के जो है वो बहुत ज्यादा आनंदित हुए, खुशी मना लेंगे। तो इस प्रकार ये कई प्रकार की लीलाएं किया करते थे नित्यानंद प्रभु जो है, बाल लीला करते थे, और इन बाल लीलाओं के माध्यम से वो क्या करते थे, एक चक्र ग्राम के जितने भी ग्रामवासी हैं उन सबको आनंद प्रदान किया करते थे। ये नित्यानंद प्रभु की जो बाल लीला है, भगवान कुछ भी करते हैं वो उसके द्वारा भक्तों को क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो एक कथा और है बाल लीला की, ये भी कथा है। तो जैसे हमने बताया था कि नित्यानंद प्रभु के साथ उनके भाई भी थे जिनका नाम था बांका राय। तो बांका का मतलब होता है टेढ़ा और राय का मतलब होता है राधा रानी। टेढ़ा कौन है, कृष्ण है, और राय कौन है, राधा रानी है। तो यहां पर गौरंग महाप्रभु बांका राय के रूप में प्रकट हुए हड़ाई पंडित के पुत्र के रूप में, और वहां पे चेतने महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए विश्वरूप, जो कि स्वयं बलराम जी है, वो भी बलराम जी के अवतार है। विश्वरूप बलराम जी के अवतार है, वो कहां प्रकट हुए, शची मां के घर पे, है ना। और यहां पर बांका राय, बांका यानी कि टेढ़ा और राय मतलब राधा रानी, तो बांका राय यहां पर प्रकट हुए छोटे भाई के रूप में। किसके छोटे भाई, नित्यानंद प्रभु के छोटे भाई के रूप में, और वहां पर बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए बलराम जी विश्वरूप के रूप में। तो इस प्रकार ये जो बांका राय है, एक बार के इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने क्या लीला की। तो बांका राय एक बार वो गांव वालों के साथ खेत में गए, और वहां पर जो जमीन थी वो उजड़ी हुई जमीन थी, तो उस जमीन को उपजाऊ बनाना था, चारों तरफ कांटे थे, झाड़ियां थी, उस सबको साफ करना था। तो करने लगे, साथ में गांव वाले भी लगे हुए थे, और गांव वाले जब लगे रहे काफी समय तक लगे रहे, थक गए वो, लेकिन सफाई हो नहीं पाए। तो बांका राय ने कहा कि आप सब घर जाएं, मैं पीछे इंतजार करता हूं, आप सब अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटे। तो बांका राय ने क्या किया, अकेले ही उस जमीन की सफाई कर दी, और क्या बना दिया, उस जमीन को उपजाऊ बना दिया बांका राय। और उसके बाद उपजाऊ बनाने के बाद बांका राय जो है फिर वो क्या हुए, अप्रकट हो गए, अप्रकट हो गए। जब गांव वाले वापस आए हड़ाई पंडित और साथ में गांव वाले भी थे, तो उन्होंने देखा कि बांका राय कहां गया, और साथ में उन्होंने क्या देखा कि जमीन जो है उपजाऊ बन गई है, जमीन बिल्कुल साफ है, चारों तरफ बिल्कुल अनुकूल वातावरण है फसल उगाने के लिए, बीज बोने के लिए बहुत अच्छा बना दिया जमीन। लेकिन बांका राय किधर गया, अचानक आवाज आई, आकाशवाणी सुनाई दी, बांका राय कहते हैं कि अब मैं प्रकट हो चुका हूं, आने वाली एकादशी की तिथि में के दिन मैं दोबारा प्रकट होऊंगा। कहां पे प्रकट होऊंगा, एक वहां पर नदी है, उस नदी का नाम यमुना जी कहते हैं वैसे तो उसको, अब उस नदी में विग्रह के रूप में मुझे प्राप्त करना आप लोग, विग्रह के रूप में एकादशी के दिन विग्रह के रूप में प्राप्त करना। तो इस प्रकार हाँ, उस घाट का नाम है कदम कंडी घाट, कदम कंडी घाट, यहां पर नित्यानंद प्रभु को बंकिम राय का विग्रह प्राप्त हुआ। तो यहां जाकर नित्यानंद प्रभु ने बंकिम राय का विग्रह प्राप्त किया, तो उनके बड़े भाई थे छोटे भाई थे, और उस विग्रह को प्राप्त करके उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने स्वयं उस विग्रह की स्थापना की। तो ये वो विग्रह है जिसमें नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने अंतिलीला का समापन किया और इस विग्रह में प्रवेश किया। ये विग्रह का दर्शन आज भी आप कर सकते हैं कि चक्रधाम में बांका रहे, बिल्कुल लगेगा बांका, बिल्कुल टेढ़े खड़े हैं उसमें, बहुत ज्यादा ही टेढ़े खड़े हैं उसमें है? हाँ लकड़ी का दारू, ये दारू मतलब लकड़ी का विग्रह। तो इस प्रकार बांका रहे की स्थापना हुई। अच्छा एक और लीला बताई गई, तो ये लीला जो है इसमें क्या हुआ कि एक बार बांका राय और नित्यानंद प्रभु ये दोनों अपने मामा के घर गए, मौरेश्वर, मयूरेश्वर भी कहते हैं इसको या मौरेश्वर भी कहते हैं, जो कि एक चक्रगाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और वहां पर अपने मामा के घर गए। तो वहां जब पहुंचे तो वहां उनको पता चला कि एक जो है कोबरा, कोबरा को अजगर कहते हैं, अजगर, तो अजगर जो है वो नहीं क्या कहते हैं नाग, नाग, तो नाग है वो बहुत परेशान करता है यात्रियों को, वहां से लोग जो भी गुजरते हैं उनके ऊपर प्रहार करता है, उनको डराता है, आक्रमण करने का प्रयास करता है, अपने फन दिखाता है ऐसे, तो लोग बड़े घबराते हैं वहां जाने में। तो उन्होंने कहा ठीक है, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कुछ होना चाहिए इसका इलाज, तो नित्यानंद प्रभु जो है चल दिए और वहां पहुंचे, उस वृक्ष के समीप पहुंचे, वृक्ष के पास पहुंचे तो सांप फिर से निकला, वो नाग अपना फन दिखाता हुआ, बोले कौन हो तुम, तुम क्यों तंग करते हो यहां पर लोगों को, गांव वालों को। बोलते हैं मैं तो यहां पर अभी से नहीं बहुत पहले से हूं, और मैं द्वापर युग से यहां पर हूं, द्वापर युग से यहां पर, और द्वापर युग से यहां कर क्या कर रहे हो, द्वापर युग की घटना आपको बताता हूं। तो द्वापर युग में क्या हुआ था कि पांडव लोग यहां पर आए थे, और ये जो पांडव लोग हैं वो आगे रुके थे एक चक्रग्राम से पहले, वेद व्यास जी ने उनको कहा था वहां पर रुकने के लिए, उस जगह का स्थान का नाम है पांडव तला, उस स्थान अभी भी आप देख सकते हैं जहां पर पांडव लोग जो हैं एक चक्रग्राम में रहने से पहले उस पांडव तला में रुके थे, पांडव तला कहते हैं स्थान का नाम है। तो वहां पर 5 पांडव और कुंती, माता कुंती, ये सब मिलकर वहां पर निवास कर रहे थे। तो फिर बाद में वो, फिर हमने जैसे बताया कि एक चक्र ग्राम में भी रुके, वेदेश्वर नाम के ब्राह्मण एक था उसके घर पर रुके। तो ये जो ब्राह्मण था बहुत गरीब था, उसके बाद धन नहीं था, फिर भी जो है उसने सोचा कि पांडव लोग भगवान के भक्त हैं और मेरा कर्तव्य बनता है इनकी सेवा करना, तो उन्होंने ये नकेन जो उन्होंने उनके लिए निवास स्थान बनाया। और कुछ समय के बाद पता चला गांव वाले परेशान थे, तो गांव वालों ने कहा कि यहां पर एक राक्षस आता है, उसका नाम है बकासुर, ये दूसरा बकासुर, ये बकासुर क्या करता है, वो आकर किसी ना किसी को उठा के ले जाता है और यहां तक कि इंसान को भी खा जाता है, वो केवल मांस भक्षी नहीं है बल्कि नर भक्षी भी है। तो बहुत परेशान है गांव वाले, क्या किया जाए, और तो और साथ में उसको बहुत कुछ खाने को भी देना पड़ता है। तो गांव वालों ने फैसला किया कि हम ऐसा करते हैं, हम सबका क्या कर लेते हैं, नंबर मान लेते हैं, जिस घर का नंबर आएगा उस घर से एक व्यक्ति को भेजा जाए और साथ में वो कुछ खाने को भी भेजे। तो ऐसे करते 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 एक दिन इनका नंबर लग गया, किसका, ये जो वेदेश्वर ब्राह्मण थे इनका नंबर लग गया। बाहर एक व्यक्ति नगाड़े बजाने लगा कि वेदेश्वर नाम का जो ब्राह्मण है वो तैयार रहे बकासुर को भोजन देने के लिए, अपने घर से किसी ना किसी को भेजे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, वेदेश्वर ब्राह्मण बड़े परेशान हो गए, वो उन्होंने अपने पत्नी से चर्चा की और बच्चों से चर्चा की, एक लड़का था विद्याधर और एक लड़की थी जिसका नाम था भानुमती, सब रोने लगे घर में। हाँ, तो लड़के ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा, आप क्यों जाएंगे, पति ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी आप क्यों जाएंगे, और लड़की ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी आप क्यों जाएंगे। तो बेचारे परेशान होने लगे, रोने लगे। तो कुंती जो है वो दूसरे कमरे में थी, माता कुंती ने पूछा कि क्या हुआ, आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हैं हमारे होते हुए, आपने हमारी इतनी सहायता की है, ये लोग अज्ञातवास में थे ना पांडव लोग, तो उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता क्यों करते हैं, क्या हो गया। तो उन्होंने बताया बकासुर के बारे में, बकासुर के बारे में बताया। तो फिर माता कुंती कहती हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, आप चिंता ना करो, आपके तो आपका तो एक ही लड़का है ना, मेरे पांच लड़के हैं। तो उनका क्या था, रोज क्या सिस्टम था पांडवों का, कि चार पांडव बाहर जाते थे और एक पांडव माता कुंती के साथ रहता था। तो चार पांडव गए हुए थे और पीछे रह गए थे सिर्फ भीम, वो भिक्षाटन के लिए जाते थे रोज। अभी हमने पहले जैसे बताया गरीब थे बेचारे, तो ऐसा तो नहीं कि रोज वहां प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी, तो बेचारे भिक्षाटन करके लाते थे घर घर जाके, जो उससे बनता था वही लोग बेचारे उसको ही लेते थे प्रसाद के रूप में। अब क्या हुआ, भीम को बताया, माता कुंती ने कहा कि भीम है ना मेरा लड़का, वो जाएगा बकासुर से मिलने के लिए, है ना, तो मैं उसको भेजती हूँ, वो उसको सेट करके आ जाएगा, आप चिंता मत करो। तो भीम के ऊपर पूरा भरोसा था, है ना, भीम तो महारथी हैं, 10,000 हाथियों का बल है उनके पास। तो भीम जो है उनको भेजा गया, उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े बैलगाड़ी में कार्ट में बहुत सारा केक रखा, केक 82 pounds, इतना केक उन्होंने रखा, और स्वयं उससे बैठ गए और रास्ते में खाते हुए जा रहे थे। अब इतना सारा केक रखा हो और खासकर एकादशी की बात, तो कौन नहीं खाना जाएगा। हाँ, तो भीम को कम ही मिलता था, भीम कितना भी खा ले वो मतलब भूख नहीं मिटती थी, है ना। अब क्या है, वो लोग जा रहे थे, वो भीम निकले रास्ते में थे, और जब वहां पहुंचे बकासुर को बुलाया, बकासुर निकलो दुष्ट, कहां छू गए हो, देखते नहीं कौन आया है, तुम्हारा काल आया है, निकलो बाहर। तो बकासुर जो है एकदम वो बड़ा क्रोधित हो गया, आज तक मुझे किसी ने चुनौती नहीं दी, ये कौन आ गया। तो बाहर आके देखा भीम को, अच्छा तुम हो, तो घमासान युद्ध शुरू हुआ दोनों के बीच में, भीम ने प्रहार किया, मुष्टि प्रहार किया, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और आखिर में भीम ने बकासुर का वध कर दिया। अरे वाह, वध करने के उपरांत भीम जो है वापस लौटने लगे। इतने में क्या हुआ कि अर्जुन आ गए वापस, चार भाइयों में से अर्जुन पहले पहुंच गए। तो अर्जुन पहुंचे, उन्होंने कहा कि भीम कहाँ है। कब भीम को मैंने भेजा है, वो बकासुर नाम का कोई राक्षस है, तंग कर रहा था वो, तो उसको सेट करने के लिए भेजा है, अभी आता होगा। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, उसको सहायता की आवश्यकता पड़ती होगी, या हो सकता है कोई दिक्कत ना आ जाए, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं जाता हूं। तो अर्जुन वहां से चल दिए। अर्जुन जब चल रहे थे तो उन्होंने चलते चलते क्या देखा, उन्होंने चिंतन किया, उन्होंने सोचा कि जितनी देर में मैं पहुंचूंगा ऐसा ना हो जाए कि वहां पर कुछ और दुर्घटना हो जाए। तो अर्जुन ने नागपाश अस्त्र छोड़ा, नागपाश बाण के द्वारा, नागपाश यानी कि जिसकी तरफ भी वो जाएगा नागपाश अस्त्र जाएगा उसको बांध ले। तो नागपाश उन्होंने छोड़ा, जहां भी वो बकासुर हो उसको तुम बांध लेना, छोड़ दिया। अब वो नागपाश जा रहा है ना, उतने में क्या हुआ, भीम आ गए सामने। अरे तुम आ गए। हम आ गया, मतलब ठीक हो बिल्कुल। अच्छा तुमने मार दिया बकासुर को। हाँ मैंने मार दिया बकासुर को। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने नागपाश अस्त्र छोड़ दिया है, अब मुझे उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो किसी को मार डालेगा, किसी को परेशान करेगा। ऐसा करो तुम घर वापस जाओ, माता कुंती बहुत चिंतित है तुम्हारे लिए, मैं जंगल की ओर जाता हूँ, वहां जाके सब देखता हूँ ठीक व्यवस्था है। तो चले गए वो जंगल, और जंगल पहुंचे और फिर वहां पर नाग वश में किया, और नाग को फिर जो है उस पेड़ में स्थान दिया, पेड़ में जिस पेड़ की चर्चा कर रहे थे वो, ये नाग स्वयं कथा सुना रहा है, द्वापर की कथा सुना रहा है। तो फिर इस तरह से मैं उस पेड़ के अंदर रहने लगा। तो अर्जुन ने मुझे कहा कि किसी के ऊपर आक्रमण ना करना, स्वयं कोई आ जाए तुम्हारे पास तो तुम उसको निकल सकते हो, लेकिन तुम स्वयं शिकार मत करना किसी का, ठीक है, तो यहीं रहो। तो तब से मैं यहां पर द्वापर युग से यहां पर रह रहा हूं, और जो कोई आता उसको मैं खा लेता। नित्यानंदपुर ने कहा कि आप इसको बंद करो, ठीक है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने अपना एक कुंडा निकाला, उन्होंने दाएं खान का शायद कुंडा निकाला, और कुंडा निकाल के उन्होंने क्या किया, उस छिद्र को बंद कर दिया, और छिद्र को क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया, उस स्थान का नाम पड़ गया कुंडली तला। अब वो कुंडल जो एक बहुत बड़े पत्थर के रूप में प्रकट हो गया है, अभी आज आप दर्शन करेंगे जाके तो वो पत्थर के रूप में प्रकट हो गया है और उस स्थान को कुंडली तला कहा जाता है। उस नाग ने कहा, पूछा था कि मेरा क्या होगा, आप कह रहे हैं कि मैं किसी को खाऊं नहीं, मैं किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करूं, तो मुझे भोजन कौन देगा। तो नित्यानंद ने आशीर्वाद दिया था उस नाग को कि आ तुम चिंता ना करो कि अपने आप ही लोग आएंगे और लोग आकर स्वयं ही तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें भोगार्पण करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे लोग, तुम्हें किसी प्रकार का कोई तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज भी बताते हैं कि गांव वाले आते हैं और आज भी नाना प्रकार के भेंट अर्पित करते हैं वहां पर आकर। तो इस प्रकार ये नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया, उस नाग का उद्धार किया और गांव वालों की रक्षा की। और ये जो एक चक्र ग्राम है, इसका नाम कैसे पड़ा, जैसे कि अभी हम परसों सुन रहे थे श्रीधाम प्रभु से, क्या सुन रहे थे, महाभारत के बारे में। तो महाभारत के युद्ध में हमने सुना था कि भीष्म पितामह के साथ युद्ध कर रहे हैं, भीष्म पितामह और अर्जुन का युद्ध चल रहा है और भीष्म पितामह बड़े ही घमासान युद्ध कर रहे हैं और जोर से प्रहार करते जा रहे हैं, बाणों की लड़ी लगा दी और यहां तक ऐसा हो गया कि अर्जुन जो है अपना बाण भी नहीं उठा पा रहे थे तीर चलाने के लिए, बहुत बुरी हालत कर दी अर्जुन की। और आखिर में क्या किया, भीष्म पितामह ने अर्जुन का रथ भी तोड़ दिया, यानी कि पहिया निकल आया बाहर। और ऐसे में जो है कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए भगवान। और क्रोधित होने पर क्या किया उन्होंने, उन्होंने पहिया उठाया और भीष्म पितामह की ओर भागे। तो ये ही रूप देखना चाहते थे भीष्म पितामह, इस वीर रस का, इस रौद्र रूप का दर्शन करना चाह रहे थे भीष्म पितामह। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने सारे अस्त्र छोड़ दिए, आइए आइए मारिए मुझे, मैं तो ये रूप का दर्शन करना चाहता था, लालाई था कब से मैं, तो आप आइए आइए मेरी ओर आक्रमण करिए। तो उसके बाद जैसे वो भाग रहे थे, कृष्ण आगे जा रहे थे, तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान का पांव पकड़ लिया। उन्हें कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं कि आपने तो वचन लिया है कि युद्ध भूमि में आप कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह भी वहां से कहने लगे, देखिए मैंने तो अपना वचन पूरा किया, मैंने कहा था कि मैं आपको मजबूर कर दूंगा अस्त्र उठाने के लिए। तो भगवान कहते, मैंने तो पहिया उठाया। उसके बाद पहिया जब उठाया तो उसको कहीं ना कहीं पटकना है, तो फिर पहिया उठा के ऐसे फेंका उन्होंने, यानी कि वो चक्र रथ का जो पहिया है वो चक्र समान होता है, तो वो जाकर यह स्थान पे गिरा था, इसलिए इस स्थान को एक चक्का कहा जाता है। महाभारत में इसका नाम एक चक्का पड़ा, फिर बाद में एक चक्र के नाम से जाना गया। हाँ, पहले वो एक चक्का नाम पड़ा। घटना पता नहीं ऐसे बता रहे महाभारत में, गौर गोविंद महाराज ने ऐसे बताया है। तो इस तरह से एक चक्का जो है वो नाम पड़ा। तो अब ये हो सकता है कि कल्प भेद हो, इस द्वापर युग का हो या उस द्वापर युग का हो, लेकिन जैसे महाराज ने वर्णन किया वैसे बता रहे हैं आपको। और वहाँ के लोग भी बताते हैं, शुभक महाराज ने भी एक बार हमें बताया था, घटना बताई। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है पुराणों में, शास्त्रों में, एक ही जो लीला है उसके अलग अलग प्रकार से वर्णन मिलते हैं। गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो अलग वर्णन मिलेगा आपको राधा रानी के प्राकट्य का, और ललित माधव पढ़ेंगे तो राधा रानी का प्राकट्य का अलग वर्णन मिलेगा आपको। तो ये सब कल्प भेद होते हैं। तो इस प्रकार ये कौन से कल्प में घटना हुई ये तो पता नहीं, लेकिन इस प्रकार वर्णन किया जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि 12 साल लगभग बीत गए नित्यानंद प्रभु को एक चक्र धाम में, और वहां पर इस प्रकार के कई प्रकार की बाल लीलाएं की। तो एक समय विश्वरूप जिन्होंने संन्यास ले लिया था और उनका नाम पड़ा था शंकरारण्यपुरी, शंकरारण्यपुरी इस संन्यास के उपरांत गौर गोविंद महाराज के अनुसार ये बताते हैं, जो सन्यासी आए थे एक चक्र ग्राम में, ये विश्वरूप थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था और उनका नाम पड़ा था शंकरारण्य। तो शंकरारण्यपुरी आए थे हड़ाई पंडित ओझा के घर पे और वहां पे कुछ समय के लिए रहने के लिए आए थे, तो वृक्ष के नीचे रहने लगे। वो वृक्ष अभी भी है, अगर आप वहां जाएंगे देखेंगे तो वृक्ष के नीचे रहने लगे। और वहां पर उस स्थान का नाम भी है विश्वरूप तला, कुछ लिखा उसमें स्थान का नाम, जहां पे ये आके बैठते थे शंकराचार्य पूरी, तो हड़ाई पंडित ओझा ने नित्यानंद प्रभु को उनकी सेवा में लगाया हुआ था कि आप रोज जाके इनकी सेवा करना, इनको प्रसाद देना, जो भी है मांगे उनको देना। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जब सेवा करने लगे तो नित्यानंद प्रभु से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, वो सन्यासी बहुत प्रभावित हो गए। और जब उनके जाने का समय आया तो हड़ाई पंडित ओझा ने पूछा उनसे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रहे कुछ समय तक, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे पूछें कि आपको कुछ दें, आपकी सेवा कर सकें। तो उन्होंने कहा, सन्यासी ने कहा कि अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप अपना लड़का दे दीजिए मुझे। और ये क्या मांग लिया है ना, इन्होंने क्या मांग लिया, हमारे लड़के को मांग लिया, अब हम कैसे रह पाएंगे। तो जिस तरह से दर्शक जो है विरह के कारण उन्होंने शरीर त्याग दिया था, इसी तरह से अढ़ाई पंडित ओझा जो है बहुत ज्यादा विरह महसूस कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने पद्मावती से पूछा, उनसे पूछा कि क्या करें, अब ये जब पूछ रहे हैं तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं, हालांकि वो बहुत दुखी हुए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे बताया हमने कि दशरथ जिस तरह से व्याकुल हुए थे, जिस तरह से भगवान कपिल ने भी अपनी माता देवहूति का परित्याग किया था, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास ले लिया था, अपनी माता शची माता को त्याग दिया था, और जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी भी चले गए थे अपने पिता को छोड़कर, तो ये सब घटनाएं हैं, इस प्रकार की घटना है, मिलती जुलती घटना है। और स्वयं भगवान श्री राम भी दशरथ महाराज दशरथ को छोड़ के चले गए थे विरह के कारण। तो विरह के कारण जो है बहुत दुखी थे, और ये सन्यासी फिर लेके गए, और वो लेकर गए कहाँ का लेके गए, पूरे भारतवर्ष में लेकर गए। 12 साल की उम्र तक जो है नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में रहे, और लगभग 20 साल उन्होंने यात्रा की पूरे भारतवर्ष की, 20 साल यात्रा की। और ऐसे ऐसे स्थानों में गए नित्यानंद प्रभु, मतलब पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया, और साथ में उस सन्यासी के साथ में गए। तो कौन कौन से स्थान में गए आप सुनना चाहेंगे, स्थान का नाम? तो ये कुछ स्थानों का नाम लिखा हुआ है जितने भागवत में वर्णन किया गया है कि कहाँ कहाँ पर गए। तीर्थ यात्रा कुरेना विंशति वत्सरा तवे शेष आयना चैतन्य गोचरा। तो तीर्थ स्थानों में यात्रा की अगले 20 साल, और बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त किया। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु कहाँ पे गए, वक्रेश्वर, और उसके बाद गए वैद्यनाथ, फिर वो गए गया, और उसके बाद फिर गए काशी, और उसके बाद फिर कहाँ पे गए, उसके बाद माघ के महीने में प्रयाग की तरफ गए, फिर उसके बाद मथुरा गए, और उसके बाद मथुरा में जाकर विश्राम घाट में उन्होंने समय बिताया, और वहाँ पे जल क्रीड़ा की, और फिर गिरिराज के दर्शन भी किए उन्होंने किए, 12 वनों का दर्शन भी उन्होंने किया, गोकुल भी गए, मदन गोपाल जी का दर्शन किया, और उसके बाद कहाँ पर आए, हस्तिनापुर आए, दिल्ली। हस्तिनापुर से भी गुजरे, हस्तिनापुर तो अभी मीरठ के पास है, इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, राज्य तो वही है लगभग, हस्तिनापुर का राज्य है ये। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रखे यहाँ पर स्थान में भी, है ना, इस कारण से नित्यानंद प्रभु की बड़ी कृपा है दिल्ली वासियों के ऊपर। उसके बाद नित्यानंद प्रभु यहाँ से द्वारका गए, और वहाँ जाकर उन्होंने समुद्र में स्नान किया। उसके बाद वो सिद्धपुर गए भगवान कपिल देव के आश्रम में, फिर गए मत्स्य तीर्थ, और उसके बाद फिर शिव कांची गए, फिर विष्णु कांची गए, फिर नित्यानंद प्रभु कहाँ गए, कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र, पृथुदक, बिंदु सरोवर, प्रभा क्षेत्र और सुदर्शन तीर्थ। उसके बाद त्रितकूप, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ, और उसके बाद प्रतिश्रोता, और उसके बाद नित्यानंद प्रभु गए नैमिषारण्य, उसके बाद अयोध्या गए, और उसके बाद कहाँ पहुंचे, चंडाल भू के राज्य में, जहां कर वो मूर्छित हो गए, चंडाल भू की लीला का श्रवण करके नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, तीन दिन के लिए भावावेश में रहे और उन वनों में गए जहां भगवान श्री राम ने निवास किया। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु अयोध्या जब निकले थे अयोध्या से, तो वहां सरयू नदी में भी स्नान किया और कौशिकी नदी में स्नान किया। पुलस्थ ऋषि के आश्रम में गए और गोमती नदी, गंडकी नदी, सोन नदी में गए और वहां जाके महेंद्र पर्वत में वहां पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने परशुराम को प्रणाम किया। और नित्यानंद प्रभु इसके बाद हरिद्वार गए, जो हरिद्वार गंगा जी का स्रोत है वहां पे गए और स्नान किया। उन्होंने अलग अलग नदियों में पंपा, भीमरती, गोदावरी, बेनवा, विपाष नदी, और उसके बाद मदुरै पहुंचे कार्तिकेय का दर्शन करके। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु श्री शैल गए जहाँ शिवजी और पार्वती का उन्होंने शिवजी और पार्वती का जो धाम माना जाता है, और वहाँ पे ब्राह्मण के रूप में शिवजी और पार्वती की पत्नी के रूप में, ब्राह्मणी के रूप में उन्होंने आकर क्या किया, नित्यानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त किया। वहाँ पर स्वयं नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त किया और स्वयं पार्वती जी ने नित्यानंद प्रभु के लिए भोजन बनाया, भोजन बनाया। और इस प्रकार फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु दक्षिण यात्रा के लिए गए, द्रविड़ देश गए। फिर उसके बाद वैंकटनाथ, कामकोष्ठपुरी, कांची, कावेरी। फिर उसके बाद श्री रंगनाथ गए, रंग क्षेत्र श्री रंगम पहुंचे। और उसके बाद हरि क्षेत्र गए, ऋषभ पर्वत, मदुरै, कृतमाला, ताम्रपाणी, उत्तरा यमुना नदी। नित्यानंद प्रभु फिर अगस्त ऋषि के आश्रम गए और मलय पर्वत में पहुंचे। और उसके बाद फिर बद्री का आश्रम के लिए चल पड़े और नित्यानंद प्रभु वहां पर उन्होंने बद्री का आश्रम में कुछ समय बिताया, नरनारायण ऋषि के आश्रम में समय बिताया और श्रील व्यास देव के आश्रम में गए। और श्रील व्यास देव ने स्वयं नित्यानंद प्रभु को वहां पे स्वीकार किया, स्वागत किया, उनका स्वागत किया और श्रील व्यास देव को नित्यानंद प्रभु ने प्रणाम किया। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु कुछ बौद्ध धर्म के लोगों से भी मिले और उस समय नित्यानंद प्रभु ने एक प्रश्न पूछा, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से प्रश्न पूछा, उनके ऊपर क्रोधित होकर, क्योंकि जब वो प्रश्न पूछा तो उन्होंने फिर क्या क्या प्रश्न दिया, उन्होंने उत्तर ठीक से नहीं दिया, उन्होंने बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया, तो क्रोधित होकर नित्यानंद प्रभु के सर पर लात मारी जोर से और सब भाग खड़े हुए। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु कन्याकुमारी की तरफ गए और वहां पे दुर्गा जी का दर्शन किया। फिर अनंतपुर गए और उसके बाद पंचासर कुंड गए। अनंतपुर वो स्थान है जहां पर श्री श्री राधा पार्षदी का मंदिर हमारा खुला है। आप जानते हैं एक और श्री श्री राधा पार्षदी हैं, असली हैं वो भी, लेकिन वो उनका जो उनकी जो कांति है श्वेत वर्ण के हैं वो, और उनका बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया अनंतपुर में। और वो जो मंदिर है रथ के रूप में है, रथ के शेप में है, पहिए हैं बहुत बड़े और 30 फुट ऊंचे घोड़े भी हैं मंदिर के आगे, ऐसे कि वो रथ को चला रहे हो, मंदिर को चला रहे हो। तो हाल ही में ये मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद वो गए शिव जी के मंदिर गए, इसको गोकर्ण कहा जाता है। फिर उसके बाद केरल गए और कई स्थानों में गए, त्रिगर्त, और उसके बाद माता पार्वती के पास उन्होंने दर्शन किया जो कि गोकर्ण के पास थी। उसके कई स्थानों में वो गए और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कई स्थानों से गुजरते गए। और कभी वो भावावेश में आ जाते, कभी वो क्रंदन करते, कभी वो रोते, और ऐसा करते करते वो क्या किससे मिले, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से मिले, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से मिले। तो माधवेंद्रपुरी हम जानते हैं, माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु ने उनको अपना शिक्षा गुरु माना। वैसे नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली लक्ष्मीपति तीर्थ से और माधवेंद्रपुरी को अपना शिक्षा गुरु माना। माधवेंद्रपुरी के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, शिष्य हुए हैं, श्री ईश्वरपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री रघुपति उपाध्याय, और इस प्रकार कई बड़े बड़े वैष्णव। श्रीपाद ईश्वरपुरी जो महाप्रभु के गुरु थे वो भी इनके शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के। तो माधवेंद्रपुरी जब मिले इनसे, नित्यानंद प्रभु से, तो भाववेश में आए और एक दूसरे का उन्होंने आलिंगन किया और कई समय तक जो है भाव में रहे, भाव भावश में रहे। और इसके उपरांत आगे ये बताया यहां पर, तो नित्यानंदपुर ने कहा कि जैसे ही मालवेंद्रपुरी का उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करते उन्होंने क्या बोला कि आज मेरी यात्रा जो है वो सफल हुई, आपके दर्शन करने मात्र से क्या हो गया, मैं पवित्र हो गया। मालवेंद्रपुरी इतने बड़े वैष्णव थे, इनका दर्शन करने मात्र से नित्यानंदपुर कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो गया। उसके बाद मालवेंद्रपुरी नित्यानंदपुर का आलिंगन किया और उसके बाद फिर वो वहां से आगे चल पड़े। और उसके बाद कई कुछ समय के बिताने के बाद नित्यानंद प्रभु सेतु बंध की तरफ बढ़े, रामेश्वरम, जो दक्षिण भारत में रामेश्वरम है वहां पर पहुंचे और सेतु बंध में पहुंचे। उसके बाद धनुष तीर्थ में उन्होंने स्नान किया और वहां पे रामेश्वर का उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। फिर उसके बाद विजयनगर गए, फिर मायापुरी गए, अवंती, गोदावरी नदी और उसके बाद जियड़ नरसिंगा। जियड़ नरसिंगा वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे, विशाखापट्टनम से जो है 5 मील की दूरी पे है, जिस इलाके को सिंहाचलम कहा जाता है, और वहां पर जाकर नरसिंह स्तोत्र, श्री नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, ये जो श्लोक है बोला था चैतन्य महाप्रभु ने, वहां पर नित्यानंद प्रभु ने दर्शन प्राप्त किया था नरसिंह भगवान का। फिर तिरुमला गए, कुरुम क्षेत्र गए और उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे जगन्नाथपुरी की ओर गए। और जगन्नाथपुरी की तरफ गए, जगन्नाथ जी का मंदिर देखा और झंडे को देखने मात्र से ही क्या हुआ, मूर्छित हो गए नित्यानंद प्रभु। जैसे ही झंडे का दर्शन किया, सुदर्शन चक्र का दर्शन किया नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। मूर्छित होना ही आते, जैसे मूर्छित होते रहते हैं। और उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त किया और उसके बाद नित्यानंद प्रभु काफी समय तक भावेश में रहे और स्वयं ही नित्यानंद प्रभु वहां पर जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर से मूर्छित हो गए। और कुछ समय नीलाचल में रहने के बाद नित्यानंद प्रभु गंगा सागर गए और कई तीर्थ स्थानों का दर्शन करके नित्यानंद प्रभु वापस कहाँ लौटे, मथुरा लौटे। और कई समय तक उन्होंने वृंदावन में समय बिताया और कुछ उन्होंने खाया नहीं, थोड़ा सा वो वहां पर जल पीते या दूध लेते। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु जानते थे कि गौरंग महाप्रभु कहाँ पर है, अभी नवद्वीप में है, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊंगा, गौरंग महाप्रभु की सेवा करूंगा। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है लेकिन कुछ समय के लिए मथुरा में रहे और यमुना जी में जल केड़ी करते थे और बच्चों के साथ खेलते थे। तो इस प्रकार कई तीर्थ स्थानों से नित्यानंद प्रभु गुजरने लगे, लेकिन इस प्रकार का संगीत नहीं था उस समय, इस प्रकार का संगीत वाद्य नहीं चल रहा था पीछे पीछे। उस समय बहुत शांति थी, नित्यानंद प्रभु के समय बहुत सुखी थे लोग, आज बहुत दुखी हैं लोग, चिंतित हैं। तो इस प्रकार तीर्थ स्थानों का दर्शन किया, तीर्थ स्थानों की यात्रा की नित्यानंद प्रभु ने, और भ्रमण करते करते तो ये भी बताया गया है कि जब वो पंडरपुर पहुंचे थे, पंडरपुर के पास जो शोलापुर जिले में है पंडरपुर, तो उसी के निकट वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, विश्वरूप जो थे, शंकरारण ऋषि थे विश्वरूप, वो नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रवेश कर गए, यानी कि अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए। और विश्वरूप कौन है, महासंकर्षण है, वही बलराम जी के अवतार हैं, तो इसलिए वो नित्यानंद प्रभु में प्रवेश कर गए। तो इसके उपरांत नित्यानंद प्रभु जो है फिर कुछ समय के बाद कहाँ पहुंचे, नवद्वीप पहुंचे। और नवद्वीप जब पहुंचे तो वहां पर वो नंदन आचार्य के घर पर रहने लगे। तो नंदन आचार्य के घर जो है हमारे इस्कॉन मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर अभी एक गौड़े मठ का मंदिर है, गौरताय मंदिर, जो मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है वहां से। नंदन आचार्य के भवन में सबसे पहले मुलाकात हुई थी चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु, और ये मुलाकात कब हुई थी, 20 साल के बाद। तो नंदन आचार्य जो है बहुत ही अनन्य भक्त थे, महाभागवत थे, और उनके घर में नित्यानंद प्रभु निवास कर रहे थे। तो इससे पहले आप आगे की घटना बताएं कि नित्यानंद प्रभु कैसे महाप्रभु से मिले और मिलकर क्या हुआ, तो हम एक और भजन गाएंगे, ठीक है, हरि बोल, क्योंकि अब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से मिलने वाले हैं, तो ये भजन हम गाएंगे, ठीक है। तो ये भजन तो हम अक्सर गाया करते हैं, तो इसमें बताया रचनदास ठाकुर ने सभी अवतारों के शिरोमणि है परम करुणा। दुई जन मतलब ये दो जन, दो जन कौन है? नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर पे थे, लेकिन बिल्कुल गुप्त रूप में थे, कोई नहीं जानता था कि नित्यानंद प्रभु कहां पर हैं। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के बारे में स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, सभी वैष्णव से जो एकत्रित वैष्णव थे उनसे कहते हैं कि आज मैंने एक बहुत अद्भुत सपना देखा है। क्या देखा मैंने? एक बहुत सुंदर रथ देखा मैंने, उसके ऊपर एक झंडा है और वो मेरे दरवाजे के निकट आकर खड़ा हो गया। उस रथ के ऊपर एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति खड़ा है, उसके कपड़ों में छड़ी है, नील रंग का चादर उसने ओढ़ा हुआ है और उसके बाएं कान में कुंडल है, एक ही कुंडल है, और उसके सुंदर रूप से मैं ये समझ चुका हूं कि ये स्वयं हलधर बलराम है। और वो बार बार पूछ रहा है कि ये घर क्या निमाई पंडित का है। तो चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति, ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं देखा। उसके शरीर से ऐसी कांति निकल रही है, अवधूत के रूप में उसने अपने आप को ढाला हुआ है और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उसने? मैं तो तुम्हारा भाई हूं, हम मिलेंगे और एक दूसरे को जानेंगे कल। और ऐसे शब्दों को सुनकर मेरा आनंद बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल मुझ जैसा ही है, वो मुझ जैसा ही लगता है देखने में। अब देखिए कोई भेद है गौरताए में? है ना, कोई भेद नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई से बहुत क्रोधित हो गए थे क्योंकि श्रद्धा तो थी महाप्रभु में लेकिन नित्यानंद प्रभु में नहीं थी श्रद्धा। तो इस प्रकार कई प्रकार होता है कि कई कुछ लोग बोलते हैं कि हम नित्यानंद प्रभु के वंशज में हैं इसलिए हमारी श्रद्धा केवल उनमें है, या हम केवल अद्वैत आचार्य को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम गदाधर पंडित को मानते हैं, हम उनके वंश में हैं, उनकी वंश परंपरा में हैं, या वो वंश परंपरा नहीं है गदाधर पंडित की लेकिन उनकी परंपरा में है, अद्वैत आचार्य की वंश परंपरा में है, नित्यानंद परिवार वंश परंपरा में है। तो इस कारण से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु को छुपा दिया, कंसील कर दिया बिल्कुल, इसलिए उन्होंने केवल महाप्रभु को दर्शन कराया राधा कृष्ण के साथ। आपने देखा ना, आप देखेंगे गौड़िया मठ में जो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो विग्रह स्थापित किए, महाप्रभु ऐसे खड़े हैं, है ना, क्या ऐसे खड़े राइट हैंड ऊपर है, राइट हैंड ऊपर है और बाएं हाथ ऐसे है, है ना, इसलिए उनको विश्वंभर कहा जाता है क्योंकि एक पूरे जगत का पालन करते हैं। नित्यानंद प्रभु को छुपा दिया, क्यों छुपाया? भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने इसलिए छुपाया क्योंकि ओडिशा और बंगाल में आज भी और उस समय भी नित्यानंद प्रभु के वंशज थे और अपने आप को वो प्रमाणिक मानते थे, वो बोलते थे हम प्रमाणिक हैं क्योंकि हम नित्यानंद प्रभु वंश परिवार में हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रचार की दृष्टिकोण से नित्यानंद प्रभु को छुपा ही दिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जब विदेशी यात्रा की और वहां जाकर देखा न्यूयॉर्क में कि यहां पर तो एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों जगह बताई है, तो इनके लिए नित्यानंद प्रभु का होना आवश्यक है महाप्रभु के साथ। इसलिए प्रभुपाद जी ने दोनों की स्थापना की, गौरताय की स्थापना की। और आज तो पृथ्वी के कण कण में गौरताय वहां विराजमान है। मतलब गौरताय की रूस जैसे देश में आज हम देखते हैं कि घर घर में वहां गौरताय के बिक रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, चाइना, कोरिया, पाकिस्तान और भारत में भी गौरताय सब जगह विराजमान है, अपनी कृपा बरसा रहे हैं, बड़े दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अर्चे विग्रह के रूप में सब जगह विराजमान है। तो क्या हुआ, ये चैतन्य महाप्रभु जो है उनका दर्शन कर रहे हैं, सपने में बता रहे हैं कि मैंने ऐसे दर्शन किया। तो प्रभुपाद की बड़ी कृपा है ना, प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें नित्यानंद प्रभु दिए, उन्होंने हमें महाप्रभु दिया, गौरता हमें प्रदान किए, प्रभुपाद जी की कृपा है। उनके गुरु भाई कहते थे, प्रभुपाद जी के भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बताते थे प्रभुपाद जी के लिए कि प्रभुपाद कौन है, आवेश अवतार है, नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार है श्रील प्रभुपाद। क्योंकि ये जो प्रभुपाद ने कार्य किया है ये शुद्ध भक्त नहीं कर सकता है, केवल इसके लिए शुद्ध भक्त होना पर्याप्त नहीं है, ये केवल वही कर सकता कार्य जिसको कृपा प्राप्त हुई है नित्यानंद प्रभु की आवेश। आवेश कौन से जानते हैं, आवेश मतलब होता है जैसे सुबह आप उठते हैं और प्रकृति का बुलावा आता है तो कैसे आप भागते हैं उसको आवेश कहते हैं। समझने का है, तरीका है, भौतिक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण नहीं है लेकिन समझने के लिए। तो प्रभुपाद को आवेश आ गया, आवेश, उस आवेश में भागे प्रभुपाद अमेरिका की ओर, है ना, और सारे जितने जगह बताए थे सबको भक्त बना लिया आवेश। वो जब आवेश होता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता, कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन। जब तक शक्ति ना हो आप कभी किसी का हृदय बदल नहीं सकते हैं। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपके जैसे कितने शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद ने कहा सैकड़ों है, हजारों है, लेकिन सब प्रचारक नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद की बड़ी अपार कृपा है हम सब भक्तों के ऊपर, कि उनकी कृपा से हम भी उनके आंदोलन में जुड़ गए, और जो भक्त लोग प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े हैं उनको भी नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली हुई है। इसलिए नया से नया भक्त भी जब आता है इस आंदोलन में नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके वो भी भक्त बनाने लगता है, और वो भी बड़े तादाद में प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटने लगता है कि नहीं। जैसे हमारे भक्त पुनीत प्रभु है, इनकी अभी आध्यात्मिक दीक्षा नहीं हुई देखा जाए तो, लेकिन कितने ग्रंथों का वितरण किया हमने। ये है प्रभुपाद जी की कृपा, ये है शक्ति, ये है शक्ति, ये है शक्ति। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और कभी क्रोधित नहीं होते हैं। नित्यानंद प्रभु कभी क्रोधित नहीं होते हैं। अकोरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकोरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा, नगरे बेड़ाए रे, नगरे बेड़ाए रे, बोलो नगर बेड़ाए रे, नगर बेड़ाए रे, अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ाए रे, अकोरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ा, अधम पतित जीव द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दीजे दुलाइया, जारे देखे तारे कहे दंते तृण धोरी, हमारे किनिया लो बोलो गौर हरि, एत बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जे झूलाते लोटा, झूलाते लोटाए रे, झूलाते लोटाए रे, सोनार पर्वत जे धूला दे लुटाए रे, मतलब नित्यानंद प्रभु जब भूमि में गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सोने का पहाड़ हो, सोने का पर्वत हो, और जब धूल में जब वो इस प्रकार से लौटते हैं तो ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत हो। बजाइए बजाइए।
हे नो अवतारे जार रति न जन्मिलो, हे नो अवतारे जार रति न जन्मिलो, लोचन बोले से ही पापी हिलवार दिलो, लोचन बोले से ही पापी हिलवार दिलो। अकोरो दो परमानंद नित्यानंद राय, अकोरो दो परमानंद नित्यानंद राय, अकोरो दो परमानंद नित्यानंद राय, अकोरो दो परमानंद नित्यानंद राय।
प्रभु की जय। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु भाव वेश में आए और भाव वेश में आकर गिर पड़े और जोर से चिल्लाने लगे बलराम जी के भाव में। और उसके बाद उन्होंने मांग की, क्या मांग की चैतन्य महाप्रभु ने, क्या मांग की बलराम जी के भाव में आकर? मदिरा वारुणी लेके आओ, वारुणी लेकर आओ। तो उनके इस जोर से आवाज को सुनकर सब लोग घबरा गए। शिवास पंडित ने कहा, सुनिए सुनिए गोसाई, ये वारुणी आपके बिल्कुल निकट है, आपके समक्ष ही है, ले लीजिए। गंगा जी का जल लिया। सब भक्त लोग कांप रहे थे। तो उन सब ने सोचा उसका पीछे, इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो इस प्रकार मुस्कुराए और बलराम जी के भाव में, संकर्षण के भाव में चैतन्य महाप्रभु कभी दाएं जा रहे थे, कभी बाएं जा रहे थे, और कुछ समय के बाद फिर सामान्य स्थिति में आ गए। और महाप्रभु कहते हैं, मेरे हृदय में भाव जागृत हुआ है कि नवद्वीप में ये महान पुरुष आ चुका है, मैंने आप सबको बताया है, मुझे अभी उन्हें मिलना चाहिए। हे हरिदास, शिवास पंडित, जाओ और ढूंढ निकालो कि कहाँ है वो। महाप्रभु की आज्ञा से दोनों शुद्ध भक्त शिवास पंडित और हरिदास ठाकुर भ्रमण करने लगे, ढूंढने लगे, नवद्वीप के चारों ओर घूमे और नवद्वीप की सड़कों में भटकते रहे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को ढूंढ नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु को ढूंढ नहीं पाया। लगातार 9 घंटे उन्होंने तलाश की, नित्यानंद प्रभु की तलाश की, लेकिन नित्यानंद प्रभु मिले नहीं। यहां तक कि बताया कि वैश्यों के घर गए, ज्ञानियों के घर गए, नास्तिकों के घर गए, जो चंडी और काली की पूजा करते थे उनके पास भी गए, दुष्टों के घर भी गए, असुरों के घर भी गए, लेकिन कहीं भी नित्यानंद प्रभु नहीं मिले। तो गौर सुंदर मुस्कुराते हुए कहने लगे, उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु जो है बहुत ही ज्यादा गुह्यतम है, जो उनके चरणों में अपराध करेगा वो कभी भी उसका छुटकारा नहीं होगा। तो शिवास पंडित और सारे भक्त जो हैं वो सब जानते थे नित्यानंद प्रभु के बारे में, लेकिन फिर भी वो ढूंढ नहीं निकाल पाए। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो मेरे साथ, हम ढूंढने चलते हैं कहां पे है वो। सब भक्त लोग मिलकर गए, संकीर्तन करते हुए गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुरारी मुरारी चलो चलो, क्या कर रहे हो घर में, तुम जानते नहीं कि आज कौन आया है, तुमने क्या अवधूत नित्यानंद को देखा है, आओ हमारे साथ चलो। तो वो ही मुस्कुराने लगे। अब वो कहां जाते, कहां रह रहे हैं, नंदन आचार्य के घर में है वो। तो नंदन आचार्य के घर में, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु चलते हुए हरी 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 करते हुए महाप्रभु जो है जा रहे थे भक्तों के साथ। शिवास पंडित, हरिदास ठाकुर, सारे भक्त लोग पीछे पीछे जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु पागल हाथी की तरह जा रहे थे। और वहां पहुंचे नंदन आचार्य के घर पे। नंदन आचार्य के घर पर जब पहुंचे तो वहां पर देखा कि पूरा घर जो है प्रज्वलित था, प्रकाशमान था, और वहां पे उन्होंने नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल एक तरह समाधि में थे, भावावेश में थे, और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने उनको प्रणाम किया, और महाप्रभु जब विश्वंभर जब चैतन्य नित्यानंद प्रभु के समक्ष आए तो समझ गए, एक दूसरे को पहचान गए। उन दोनों में कोई भेद नहीं था, और इस प्रकार आपस में जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने एक दूसरे को महाप्रभु ने एक दूसरे को देखा तो स्तब्ध हो गए और आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। और इस प्रकार जब नित्यानंद प्रभु स्तब्ध से हो गए तो गौरंग महाप्रभु ने शिवास पंडित की ओर इशारा किया, और शिवास पंडित ने श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर श्लोक उद्धृत किया, बरा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिप्रद वासः कनक विषम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही। तो ये जब श्लोक सुना नित्यानंद प्रभु ने तो नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, भावेश में आ गए। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा कि बोलते जाओ रुकना नहीं, तो इस प्रकार सब लोग प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण इनकी रक्षा करे, ये मूर्छित हो गए। क्योंकि ये क्रंदन करते कभी भावेश में आते तो कभी कभी तो अपने आप को जमीन पर पटक देते बहुत जोर से, और ऐसा लगता कि अभी हड्डी टूट जाए, बहुत भाव के कारण जो है वो संभाल नहीं पा रहे थे अपने को एक दूसरे को। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के वो भी चरण में गिरे, महाप्रभु के चरणों में गिरे। तो नित्यानंद प्रभु क्रंदन करते, रोते, कभी नृत्य करते। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारा वर्णन किया गया है कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु जब पहली बार मिले महाप्रभु से तो किस प्रकार वो आपस में भेंट किए, किस प्रकार वो लोग भाववेश में आए, नृत्य किया, कीर्तन किया। तो ये पहली मुलाकात थी नंदन आचार्य के घर। जब हम लोग अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं, नवदी मंडल परिक्रमा, तो सबसे पहले हम लोग नंदन आचार्य के घर पर जाते हैं, उसके बाद हम फिर गोद्रुप द्वीप की तरफ बढ़ते हैं। नवदी मंडल परिक्रमा जिन्होंने नहीं किए है कभी जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए, है लेकिन अनुमति लेकर जाए। तो वहां पे पहली बार मुलाकात हुई थी। तो आगे बताया जा रहा है, अगला अध्याय है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, उसमें और सारी बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि अगर हम बता देंगे संक्षेप में तो इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आज सायंकाल 7:30 बजे फिर हम मिलेंगे और जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर मधुर लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु की लीला है, श्रीवास पंडित के साथ रुके थे और वहां पर हम बता देते हैं कि क्या क्या हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। व्यास पूजा उत्सव मनाया गया था, नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की थी, चैतन्य महाप्रभु ने उनको षडभुज रूप दिखाया था। षडभुज रूप वो नहीं जो सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया, ये दूसरा षडभुज रूप था वो दिखाया। और श्रीवास पंडित का विशेष प्रेम नित्यानंद प्रभु के लिए, और माता शची को जो सपना आया, और कई प्रकार की लीलाएं, भोजन लीला, महाप्रभु की लीला और नित्यानंद प्रभु की लीला, भोजन लीला और नित्यानंद प्रभु की कई जो लीलाएं हैं श्रीवास पंडित के जो घर पे घटित हुई। और श्रीमान महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का यहां पर गुणगान किया था, जगाए बधाए का उद्धार हुआ था, और उसके बाद गौरंग महाप्रभु ने संन्यास की चर्चा की थी नित्यानंद प्रभु के समक्ष। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु नवदीप वासियों से मिले थे, और बाद में जगन्नाथपुरी जब जा रहे थे, ये अंत्यखंड की बात है, अंत्यलीला, जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ जा रहे थे अन्य पार्षदों के साथ, तो सुवर्ण रेखा जो नदी है वहां पर किस तरह नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का जो संन्यास दंड है उसको तोड़ा, और उसके बाद नित्यानंद प्रभु किस तरह से उनका स्नान किया गया, अभिषेक किया गया राघव पंडित के घर में, गदाधर दास से कैसे मिले वो, और सप्त ग्राम में कैसे वहां के सप्त ग्राम के वासियों का उद्धार किया, और अद्वैताचार्य से मिले। नित्यानंद प्रभु जब वापस नवदीप आए तो वहां पर उन्होंने चोरों का उद्धार किया। हिरण्य पंडित के घर पे रहे और एक ब्राह्मण को शक हुआ था नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो शंका दूर की गई चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। उसके बाद नित्यानंद प्रभु किस तरह नीलाचल गए और वहां जाकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया। नित्यानंद प्रभु की लीला, भोजन लीला जो गदाधर पंडित के घर पर उन्होंने की, चैतन्य महाप्रभु ने फिर आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु को विवाह करने के लिए। जानवा माता और वसुधा इन दोनों से विवाह किया था, सूर्यदास पंडित की सुपुत्री थी। और उसके बाद वीरचंद्र प्रभु जो नित्यानंद प्रभु के सुपुत्र हुए, वीरभद्र जिनको कहा जाता है, उनके बारे में जन्म का वर्णन है। और नित्यानंद प्रभु कैसे उन्होंने बांका राय के बिगड़े में एक चक्र ग्राम में वापस आकर निकले वहां से थे और वापस भी वहां कर आकर बांका राय के बिगड़े में प्रवेश किए थे। तो इन सब का हम संक्षेप वर्णन करना चाहेंगे जो सायंकाल हम लोग यहाँ बैठेंगे 7:30 बजे, और एक भजन लोग गा सकते हो, सुनाने के लिए फिर बहुत है। यह है नर्तन दास ठाकुर।